नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुः बिभ्रात् स्मसत्व निधनम् सततार्त्युदर्कम् तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि। लेखन के हटाओ के पीछे पारक्य नित्य वसितो विचराम्य संगः। एकदम पीछे जायात्मजार्थ पशुभृत्य गृहात् वर्गान् उष्णातिजत्प्रियचिकीर्षया वितन्वन् स्वान्ते सकृच्छ्रमवरुद्धधनः सदेहः सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा। जिह्वैकतो अमुमपकर्षति कर्हि तर्षा शिश्नान्यतस्त्वगुदरम् श्रवणम् कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्चपलदृक् क्वच कर्म शक्तिः बह्व्यः सपत्नैव गेहपतिम् लुनन्ति सृष्ट्वा पुराणि विविधा न जयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपपशुन् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषम् विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम् मुदमाप देवः लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम् बहुशम् भवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णम् जते तलपतेदनुमृत्युजावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात् एवम् सञ्जात वैराग्यो विज्ञानालोकयात्मनि विचरामि महीमेताम् मुक्तसङ्गो नहम् कृतिः न हि कस्माद् गुरोर्ज्ञानम् सुस्थिरम् स्यात् सुपुष्कलम् ब्रह्मैतदद्वितीयम् वै गीयते बहुधर्षिभिः।
श्रीभगवानुवाच
इत्युक्त्वा स जदुम् विप्रः तमा मन्त्रगभीरधिः बन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम् अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषाम् नः स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। देह गुरु हो, गुरु है, मामा मेरा, मेरा देह भी मेरा गुरु है। क्यों? विरक्ति विवेक हेतु, यह विरक्ति प्रदान करता है और विवेक देता है, और विभ्रात किस तरह विरक्ति देता है, यह सर्वदा साथ रखता है। स्म निश्चित सत्व निधनम जन्म और मरण को, मेरा जन्म मरण नहीं होता है लेकिन इस शरीर का निश्चित जन्म मरण होता है। सतता सदा, आरती दुख, उदरकम परिणाम उत्तरफल, शरीर के कारण हमेशा दुख मिलता है। इसलिए मैं शरीर से वैराग्य सीखा हूं। शरीर द्वारा सीखा हूं और शरीर से ही वैराग्य करना चाहिए ये सीखा हूं। तत्वानी और किस तरह है विवेक का कारण है वो बता रहा हूं। तत्वानी तत्वों को, असली वस्तुओं को, भगवान, भगवान की भक्ति, नाम गुण लीला आदि, अनेना इसी देह द्वारा, बिम्रशामी विचार करता पाया हूं। इस तरह शरीर मुझे ज्ञान दिया। जथा ठीक ठीक ज्ञान, जथावत, तथापि फिर भी, पारक्यम यह दूसरे का है, सियार और कुत्ता का भोजन है। इति ऐसा, अवशितः निश्चितवान, ये मेरा निर्णय है। इस निर्णय के साथ विचरामि, मैं विचरण करता हूं, असंगः इस गुरु से पूरा अनासक्त रहकर, देह मम गुरु, देह मेरा गुरु है। अब नहीं बोलना है आप लोगों को, ये 25वां गुरु है अपना देह, या किसी का भी देह उसे सीख सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देह मम गुरु, देह भी, देहो अपि मम गुरु। क्यों गुरु है? गुरु किसे कहते हैं? ज्ञान वैराग्योर दाता गुरु लोकेषु कथ्यते, लोक में उसको गुरु कहा जाता है जो भगवान का ज्ञान देता है और संसार से वैराग्य देता है। तो जो ज्ञान और वैराग्य देता है उसको गुरु कहा गया है लोक में, प्रसिद्ध बात, ऐसा शिष्ट जिन्होंने कहा है। तो ज्ञान और वैराग्य देता है शरीर, इसलिए यह गुरु है। वैराग्य इस तरह से देता है कि जब हम शरीर पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि यह केवल दुख देने के लिए है और एक दिन मर जाएगा, गर्भ में बनता है, इसमें रोग होता है, दुख होता है, क्या होता है, इसलिए ऐसे दुख देने वाले शरीर से मुझे वैराग्य, इसमें वैराग्य सीखा। और ज्ञान क्या मिला, विवेक क्या हुआ मुझे इसके द्वारा, विवेक यह देता है कि इसी देह से भगवान का भजन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे 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 राम राम। तत्वानि अनेन बिंबिष्यामि, अनेन तत्वानि बिंबिष्यामि, इसी शरीर से मैं तत्व को ग्रहण करता हूँ। भगवान का नाम सत्य है तो उसको मैं लेता हूँ, उनका रूप देखता हूँ, और भी कई तरह से भगवत अनुभव इसी शरीर से करता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा है। इससे मैं ज्ञान लिया हूँ और इससे वैराग्य सीखा हूँ। तथापि फिर भी एवं अति उपकारित्वे अपि, इस देह ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, फिर भी देहे न इवास्था कर्तव्यमित्य, फिर भी इस पर विश्वास मेरा नहीं है। इतना बड़ा उपकारी है लेकिन इसमें मेरी आस्था नहीं है। आस्था का अर्थ होता है जिस विचार में, जिसमें मनुष्य बहुत अच्छी तरह से स्थित रहे। इतना बड़ा उपकारी है ये मेरा गुरु लेकिन मैं इसके साथ नहीं हूं, उससे हमारा कोई मेल नहीं है। तथापि ठीक है, ये इसने हमको वैराग्य दिया है, इससे ज्ञान सीखा हूं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं है कि कब गिर जाएगा, क्या होगा, और कुछ तो निश्चित रूप से मैं इसको जानता हूं कि पारक्यम कुछ भी है, अंत में यह कुत्ता और सियार का भोजन। इति अवसित, ये तो मैं देख करके कह रहा हूं, ये निश्चित है, इसलिए विचरा में असंग, मैं असंग होकर के शरीर से अनासक्त होकर के घूमता। दूसरे लोग शरीर में आसक्त होकर के घूमते हैं, कहीं मान लीजिए जा रहे हैं तो किसके लिए जा रहे हैं, देह के लिए जा रहे हैं। शरीर चलाने के लिए पेट सबसे मुख्य अंग है, तो लोग कहते भी हैं पेट के लिए करना पड़ता है, तो देह के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब देह में आसक्त है। पर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं देह में नहीं हूं, असंग। तो हमें ये सीखना चाहिए कि देह में न रहो। एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात कहा था एक बार, अकस्मात कहा कि महाराज जी सबसे पहले तो ये सीखना है कि देह से बाहर कैसे रहा जाता है। देह से बाहर रहना सीखना चाहिए ना। तो देह में रहने का मतलब है कि देह के लिए काम करना है, करना रमोट पूरा खड़ा कीजिए पीछे, हाँ चलिए खड़ा हो, बिचरा में असंग, मैं देह के लिए नहीं घूमता हूं। हम लोग भी भागवत में आए हैं तो आश्रम देह के लिए नहीं आए, आत्मा के लिए आए हैं, देह को ढो रहे हैं, जहां जाएंगे वहां देह को ले जा रहे हैं, देह के अनुसार नहीं जा रहे, देह की मांग को पूरा करने के लिए जाना, देह के सुख के लिए है। हरे राम राम। तत्वानि अनेन बिंबिष्यामि, अनेन तत्वानि बिंबिष्यामि, इसी शरीर से मैं तत्व को ग्रहण करता हूँ। भगवान का नाम सत्य है तो उसको मैं लेता हूँ, उनका रूप देखता हूँ, और भी कई तरह से भगवत अनुभव इसी शरीर से करता हूँ, इसलिए बहुत अच्छा है। इससे मैं ज्ञान लिया हूँ और इससे वैराग्य सीखा हूँ। तथापि फिर भी एवं अति उपकारित्वे अपि, इस देह ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, फिर भी देहे न इवास्था कर्तव्यमित्य, फिर भी इस पर विश्वास मेरा नहीं है। इतना बड़ा उपकारी है लेकिन इसमें मेरी आस्था नहीं है। आस्था का अर्थ होता है जिस विचार में, जिसमें मनुष्य बहुत अच्छी तरह से स्थित रहे। इतना बड़ा उपकारी है ये मेरा गुरु लेकिन मैं इसके साथ नहीं हूं, उससे हमारा कोई मेल नहीं है। तथापि ठीक है, ये इसने हमको वैराग्य दिया है, इससे ज्ञान सीखा हूं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं है कि कब गिर जाएगा, क्या होगा, और कुछ तो निश्चित रूप से मैं इसको जानता हूं कि पारक्यम कुछ भी है, अंत में यह कुत्ता और सियार का भोजन है। इति अवस्थित, ये तो मैं देख करके कह रहा हूं, ये निश्चित है, इसलिए विचरा में असंग, मैं असंग होकर के शरीर से अनासक्त होकर के घूमता। दूसरे लोग शरीर में आसक्त होकर के घूमते हैं, कहीं मान लीजिए जा रहे हैं तो किसके लिए जा रहे हैं, देह के लिए जा रहे हैं, शरीर चलाने के लिए पेट सबसे मुख्य अंग है, तो लोग कहते भी हैं पेट के लिए करना पड़ता है, तो देह के लिए काम कर रहे हैं, इसका मतलब देह में आसक्त। पर भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं देह में नहीं हूं, असंग। तो हमें ये सीखना चाहिए कि देह में न रहें। एक व्यक्ति बहुत अच्छी बात कहा था एक बार, अकस्मात कहा कि महाराज जी सबसे पहले तो ये सीखना है कि देह से बाहर कैसे रहा जाता है। देह से बाहर रहना सीखना चाहिए ना, देह में रहने का मतलब है कि देह के लिए काम करना है, करना रमाउट पूरा खड़ा कीजिए पीछे, हाँ चलिए खड़ा हो, तो विचराम या संग, मैं देह के लिए नहीं घूमता हूं। हम लोग भी भागवत में आए हैं तो आश्रम देह के लिए नहीं आए, आत्मा के लिए आए हैं, देह को ढो रहे हैं, जहां जाएंगे वहां देह को ले जा रहे हैं, देह के अनुसार नहीं जा रहे, देह की मांग को पूरा करने के लिए जाना, देह के सुख के लिए जाना, यह है देह में आसक्त होकर के जाना। कहीं गए अगर देह का सुख नहीं मिला, आत्मा का कुछ भी सुख हो, तो मूर्ख लोग वहां से भाग जाते हैं, यह नहीं चीज, यह असुविधा है, वो है, ये है, ये है, वो है, ऐसे है, ऐसे भाग जाते, लेकिन जो देह से ऊपर उठ चुके हैं वे देह की असुविधा पर ध्यान नहीं देते, आत्मा का हित करते। तो इस प्रकार से मैं इस देह से अलग रह रहा है, पारक्यम स्वश्रृगालादि श्रृगालादि भक्ष्यम इति निश्चितवान। यह बात बारंबार विचारणीय है कि हमारा देह एक दिन कुत्ता और सियार या गिद्ध का भोजन बनेगा, अथवा जमीन के अंदर जाएगा या आग की लपटों में जल जाएगा। अपने शरीर के विषय में हमें अध्ययन रखना है, सर्वदा बारंबार विचार करते रहना चाहिए कि शरीर रहेगा नहीं, चला जाएगा, अच्छा वो भी कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं। इसलिए संसार में क्या आस्था करेंगे, शरीर में ही आस्था नहीं करनी है, इसको ज्ञान कहते हैं। आज भी कहता है परिवार की आसक्ति छोड़ो, परिवार की आसक्ति छोड़ो, अरे परिवार की आसक्ति तो छोड़नी है, पहले तो देह की छोड़नी है, नहीं तो परिवार छोड़ने के बाद भी आदमी देह पोसने लगता है। बहुत ऐसे लोग तथाकथित साधु संत हैं जो अपना घर छोड़ दिए हैं, लेकिन मंदिर में मठ में रहकर देह को खूब पोस रहे, उनका पहनाव देखिए तो मोजा उतरता ही नहीं है, पैसे संन्यास ले लिए, घर द्वार छोड़ दिए, लेकिन अब मोजा चढ़ा हुआ है। हम पहले यही जानते थे कि केवल दूल्हा मोजा पहनता है, हम वास्तव में चूंकि हम लोग गरीब गांव के हैं तो पहले लोग इस तरह से मोजा नहीं पहनते थे, तो जिस लड़के का विवाह होता था उस दिन मोजा और खूब बढ़िया जूता पहनकर जाते, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि स्कूल जाते समय या बाजार जाते समय या कहीं भी मोजा पहनने का शौक हो गया, और भगवान के मंदिर में भी मोजा पहन पहन करके जाते हैं, जबकि मोजा पहनना आधा जूता पहनने के समान है। बहुत दुर्गंध निकलती है गर्मी के दिन में। तो खैर, गृहस्थ मोजा पहने चाहे जितना जीट जाट से रहे, अब साधु को इतना संवारने की क्या हो सकता है। परंतु इस समय गृहस्थों से ज्यादा साधु ही अपने को संवार रहे। नहाने के बाद और तिलक आदि करने के पहले सेंट फेंट लगाते हैं। हम देख करके दंग हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है भैया, वाह कलयुग वाह, कमाल कर दिया। जो गृहस्थ लोग नहीं कर रहे हैं उससे बढ़ करके त्यागी लोग कर रहे हैं। लेकिन त्याग का अर्थ है कि जैसे आदमी और चीज छोड़ दिया है तो देह से भी आस्था छोड़ देनी चाहिए। देह को थोड़ा सा अन्न दे दिया, कपड़ा ओढ़ा दिया, शीत से घाम से बच गया कि अब इसमें मोजा और अलंकार धारण करेगा। कई मैं सन्यासियों को देखा, सिकरी लगाई है, सोना की सिकरी। वास्तव में आश्चर्य अद्भुत कली का नाटक। कलयुग लगता है एकदम जवान हो गया, अब चरम सीमा पर है, अनेक भी लज्जा नहीं आती है सोना धारण करने, अंगूठी पहनने। तो यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैं तो इससे बिल्कुल असंग घूमता हूँ, शरीर में हूँ लेकिन शरीर से बिल्कुल परे हूँ। तो सबका एक कर्तव्य है, देखना चाहिए शरीर पारक्य है, ये रहेगा नहीं, अंत में इसको नष्ट होना है, और है बड़ा फायदा वाली वस्तु, बड़ी उपयोगी वस्तु है देह, इसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। तो जब इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी तो जितना जल्दी हो करनी चाहिए ना, क्योंकि गिरने वाला है, कुकुर सियार के पेट में जाने वाला है। तो जब तक है तब तक तो सियार का भोजन है। एक सियार के भोजन को खूब तेल चोवा चंदन लगाने की क्या जरूरत है। ये तो उस तरह से है जैसे हम लोग दाल छौंक करके टेस्ट बढ़ाते हैं, छौंकते हैं, या हलवा में घी डालते हैं। तो इस तरह से कुकुर सियार के इस भोजन में खूब श्रृंगार करना, छौंक छौंक करके इसको टेस्ट बनाना, खूब तेल मालिश चलती है। अगर कुकुर सियार के भोजन में तेल लगने लगता है तो एक एक दो दो घंटा तक लगता है। अब कोई कुछ भी करे लेकिन वास्तव में कुत्ते सियार कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक बा, खूब संवार ले। लेकिन जहां दिन गिरी ता दिन हमारे पेट में आए, कुछ भी नाम हो जाए, चाहे प्रधानमंत्री नाम हो जाए इस भोजन का, चाहे राष्ट्रपति नाम हो जाए, कुछ भी नाम बीच में धारण करेगा लेकिन अंत में स्वश्रृगाल भक्ष्य, अंत में तो उनका भोजन होना ही है, और नहीं तो अग्नि का, और नहीं तो पृथ्वी में कीड़ा बनना है। तीन गति में से एक गति होगी देह की, इसलिए देह से परे रहना है। इतना बड़ा उपकारी है, ज्ञान वैराग्य देने वाला है, लेकिन फिर भी ऐसे गुरु से अनासक्त ही रहना ठीक है। इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए, आस्था नहीं करनी चाहिए शरीर में। प्राय लोग इसी आस्था में रहते हैं कि अरे हाँ भी हम बहुत दिन जिएंगे। किसी के साथ बात लगी हुई है, किसी को विश्वास नहीं है कि नहीं मैं जल्दी मर जाऊंगा, नहीं अभी नहीं मरूंगा। मरने के लिए लोग मर रहे हैं दुनिया में, लेकिन हम अभी नहीं मरेंगे। जो लोग 50 पार कर गए हैं वो भी सोचते हैं कि नहीं अभी तो 50 वर्ष और जिए, इस तरह से सोचा करते। परंतु ज्ञानी आदमी को चाहिए कुछ देह में आस्था न करे, और देह से उत्पन्न वस्तुओं में क्या आस्था की जा सकती है। तो ये ज्ञान और वैराग्य को सीखने में देह मेरा 25वां और सर्वश्रेष्ठ गुरु है, लेकिन मैं इसमें कोई अटैच्ड नहीं। अच्छा इतना ही नहीं, जो सतत दुख देता है यह शरीर, उसको आगे बता रहे हैं किस तरह शरीर सतत दुख देता है। वास्तव में कोई न कोई रोग शरीर में लगा रहता है, कभी सिर दर्द कर रहा है, तो कभी दांत दर्द कर रहा है, तो कभी कहीं दुख है, तो तब तक भूख लग गई, तो भूख की ज्वाला, फिर कोई अपमान करता है उसका दुख, ये दुख, और बुढ़ापा में यह शरीर और अधिक दुखदायी हो जाता है। तो इस प्रकार शरीर का केवल उत्तर फल है, बाद में क्या लाभ है इसका, तो दुख आरती, तो उसी को बता रहे हैं आगे। सतत आरती दरकता प्रपंचयति जायात्म जार्थ पशुभृत्य गृहाप्त वर्गान पुष्णातिजत प्रिय चिकित्सया वितन्वन स्वान्ते सकृच्छ्रमवरुद्ध धनः सदेह सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्ष धर्मा। केवल यह शरीर दुख ही नहीं देता है, बल्कि आगे भी दुख देने की व्यवस्था करके जाता है। जस्य देहस्य प्रिय चिकित्सया, जत प्रिय चिकित्सया, जिस देह का प्रिय करने की इच्छा से, भोग संपादन की इच्छा से मनुष्य स्त्री स्वीकार करता है। सबसे पहले कोई विवाह क्यों करता है, क्यों स्त्री संग्रह करता है, देह को सुख देने के लिए। वो भोजन बनाएगी, सेवा करेगी, चरण दबाएगी और भी बहुत तरह से सुख देगी, इसके लिए पहले स्वीकार करता है जाया। आत्मा के लिए जाया जरूरी नहीं है, देह के को आराम देने के लिए, देह को सुख देने के लिए। जत प्रिय चिकित्सया, जस देहस्य प्रिय चिकित्सया, प्रिय करने की इच्छा से, अर्थात भोग संपादन की इच्छा से स्त्री स्वीकार करता है, और स्त्री के बाद वो चाहने लगता है कि हमको पुत्र होना चाहिए। अपने देह के लिए ही ये सब चाहता है। जायात्मज आत्मज, जब जाया आती है मतलब पत्नी आती है, तो इसके बाद आत्मज पुत्र। अच्छा स्त्री हो गए, पुत्र हो गए, तब चाहिए अर्थ, पैसा चाहिए, पैसा कमाने के फेर में पड़ता है या खेत खरीदने के फेर में पड़ता है, जैसे पैसा। पशु, इसके बाद पशु चाहिए दूध खाने के लिए और कुछ ऊर्जा शक्ति, ये तीन काम के लिए पशु की जरूरत होती है। एक तो गाय भैंस चाहिए दूध खाने के लिए, और हाथी घोड़ा आदि चाहिए सवारी करने के लिए, और बैल ऊंट आदि चाहिए खेत जोतने के लिए। इस तरह से यह क्यों इतना झमेल इकट्ठा करता है, जाए के अकेल बा झमेल कौन काम के गाते हैं लोग, ये सब क्यों करता है मनुष्य, केवल देह को सुखी करने के लिए, देह के लिए करता है। तो देह के लिए पत्नी पुत्र धन और पशु, कोई अपने घर में पशु रखा है क्या, पशु के लिए ना, अपने लिए रखा है कि नहीं, अपने लिए रखा है, फिर भी पशुओं की सेवा नहीं कर पाता है। टाइम पर कुछ लोग पानी तक नहीं पिलाते हैं, कसाई अपने लिए रखे हैं, बकरी से लेकर के हाथी तक जो भी पशु है आदमी अपने लिए रखा है, पशु के हित के लिए नहीं रखा है। ऐसा नहीं चलो मन में आ गया कि मेला लगा है तो जरा दो चार पशु खरीद कर हम भी पालन करें, क्या बैठे बैठे करेंगे, इसके लिए कोई पशु नहीं लाता है, अपने देह के लिए लाता है। चाहे हाथी घोड़ा वो अपने बस में करके चढ़ता है, देह से चलना नहीं चाहता है, चढ़कर चलना चाहता है, माल ढोता है, भृत्य और नौकर चाकर रखता है, भृत्य रखता है, दास दासी रखता है अपने लिए, और फिर गृह बहुत तरह से घर बनाता है, ऐसा रूम बनाओ, ये करो ये करो, किसके लिए, देह के लिए, देह के लिए घर बनाता है। अच्छा फिर आप्त, फिर संबंधी मिलते हैं, आप्त कहते हैं जो बाद में मनुष्य को प्राप्त होते हैं, तो आप्त का अर्थ है समधि ये और भी जो भी संबंध विवाह करने के बाद जो संबंधी प्राप्त होते हैं उनको आप्त कहते हैं। एक जगह विवाह होने पर तब समधी साले बहनोई क्या क्या मिल जाते हैं। अब तो बहुत ज्यादा साधु करना तक चल रहा है, तो सबसे बरियार बाई ऐसे कि स्त्री के कारण बाबू एक घर में विवाह हो गया है दो आदमी का, तो उसको सोढ़वाह संस्कृत में कहते साढ़ू, उसी को कहते साढ़ू, मतलब एक साथ एक घर में विवाह हुआ है, तो साढ़ू से इतना प्रेम हो गया है कि अपने सहोदर से उतना प्रेम नहीं है। सहोदर भाई से तो हो सकता है साल में एक दो बार बात भी ना हो, या हो सकता है मुकदमा चल रहा है, और साढ़ू से रोज समझा रोज बात, और बड़े गर्व के साथ इस समय लोग बोलते हो तुम साढ़ू लगे साढ़ू भाई हो। स्त्री में इतनी आसक्ति है कि उसके चलते साढ़ू भाई का नाता इतना जोर पकड़ा है। तो आप तो बरगान इस तरह से संबंधी और जो कुछ है इन सबको पुष्णाती, इन सबको क्यों पोषता है, क्यों स्त्री रखता है, क्यों पुत्र उत्पन्न करता है, पैसा कमाना, पशु रखना, नौकर रखना, घर द्वार बनाना, हित गण इकट्ठा करना, ये सब किस लिए? जत प्रिय चिकित्सया, देह के प्रिय, देह का प्रिय करने के लिए। लेकिन यह देह ऐसा बदमाश है, इसके लिए बेचारा जीव सब जुटाता है देह के लिए, लेकिन स्वांते सकृच्छ मौर उद्धन सदेह सृष्टवास बीज मौसीदति वृक्ष धरना, लेकिन अंते अवसीदति नश्यति। इतना देह के लिए किया जाता है लेकिन देह इतना कृतघ्न है कि अंत में ये नष्ट हो जाता है, ये साथ नहीं देगा। वास्तव में जनरली आप विचार करके देखिए तो आत्मा देह नहीं छोड़ना चाहता है, वो देह के साथ रहना चाहता है, लेकिन ये देह बिना उसको छोड़े रहेगा नहीं, ये गिर जाएगा। जो ज्ञानी होते हैं, परम भक्त होते हैं भगवान के, वे लोग तो देह छोड़कर चले जाते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति। लेकिन जनरल लोग जो हैं उनको देह ही छोड़कर गिर जाता है, वे लोग देह नहीं छोड़ते हैं। देखते हैं कि देह हमको छोड़ने की हालत में है तो लेकर भागते हैं अस्पताल इधर उधर की, भैया इसी देह में रहो। तो आत्मा जो उज्जवल है, चिन्मय है, वो इस अधम इस मृतक देह में रहना चाहता है, फिर भी आत्मा को छोड़कर गिर जाता है, देह साथ नहीं देगा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
कम से कम इस देह को इस समय अपने बस में रखिए कि कथा सुने, इसके बस में होकर के सो मत जाइए। सुन रहे हैं ना कथा? कोई भी आत्मा देह से निकलना चाहता है न? देह 95 वर्ष का जलपा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, फिर उसी में रहना चाहता है। लाख दुख हो रहा है लेकिन आत्मा ऐसा फंसा हुआ है, उसे तो नहीं ठीक है, इसी देह में रहे, इसी देह में रहे। और जहां 100 वर्ष पार किया कि आत्मा को आनंद होता है, सोचता हाँ 100 वर्ष इसी देह में, और उसको तुरंत अपनी शताब्दी मनाना चालू करते हैं। कितने लोग बड़े गर्वित होते हैं कि उनके जीवन काल में उनकी शताब्दी मनाई, 100 वर्ष पूरा होता है तो उनको लोग पैसा देते हैं, जय मनाते हैं, फेस्टिवल होता है, 100 वर्ष इस नरक में रह गए, किसी कुछ सिद्ध है। तो 100 के बाद वो बेचारा सोचता है कि और शताब्दी आ जाए दूसरी, यही रह जाए, लेकिन ये देह रहेगा नहीं, उसको छोड़ देगा, आत्मा को छोड़ेगा। स्वान्ते सकृच्छम अवरुद्ध धन सदेह सदेह कथम भूत पुरुष पुष्णात पुरुष, कैसा जीव है? तो जीव के बारे में बता रहे, सकृच्छम जथा भवति तथा अवरोधानि संचितानि धनानि चेन स। देह को पोषने के लिए आत्मा इतना इतना काम करता है, सवेरे 4 बजे भोर से लेकर के 10-11 बजे रात तक, या कभी कभी पूरी रात, धन कमाता है, इकट्ठा करता है और धानी संचितानी धनानी जनसा, बहुत बहुत धन संचय करता है, इकट्ठा करता है बहुत कृच्छ्र के साथ, सकृच्छ्रम बड़े भारी परिश्रम के साथ, लेकिन यह देह जिस देह के लिए वह ऐसा करता है, सदेह स्वान्ते स्वस्य आयुषः अन्ते, अपनी आयु का अंत होने पर अवसीदति नश्यति। अच्छा, देह नष्ट हो जाता है, मर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि देह नाशे अपि दुख समाप्ति रित्या है, देह चला गया तो चलो दुख खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। यह देह गिरने से पहले पहले दूसरे देह के लिए बीज बो करके जाता है, बीज बो देगा दूसरे देह के लिए, मतलब इस देह में जो हम लोग काम कर रहे हैं इसके अनुसार निश्चित हो जाता है कि अब दूसरा देह मिलेगा। या कोई कहे कि भाई अगर देह दुख देने वाला है ठीक है, लेकिन आखिर एक दिन तो ये गिर जाएगा तो दुख बंद हो जाना चाहिए, कहते नहीं, यह कई कई शरीर आगे मिलेगा इसकी व्यवस्था करके जाता है। सृष्टवास्य बीजम, अश्य मतलब जीवस्य, जीव के लिए यह दुख का बीज बो करके जाता है, वृक्ष धर्मा, क्योंकि यह वृक्ष धर्मा है, वृक्ष जैसा इसका स्वभाव है, जैसे वृक्ष है, वृक्ष गिरता है लेकिन कई बीज उत्पन्न कर देता है तो दूसरे वृक्ष हो जाते हैं, उससे चलता रहेगा। तो दुख का वृक्ष बो करके जाएगा, बीज बो करके जाएगा, इसके बाद फिर शरीर लेना है, शरीर लेंगे, उस शरीर को छोड़ेंगे तो फिर उसके अनुसार दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, चौथा शरीर, इसमें शरीर मिलता रहेगा। तो ये देह जाएगा लेकिन और शरीर की व्यवस्था करके जाएगा, इसलिए बहुत दुखद देह, ऐसे देह में आस्था नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग साधु हो जाते हैं आराम के लिए, घर द्वार में बड़ा झंझट है, चले किसी मठ मंदिर में छाट से खाएंगे पिएंगे, लेकिन यहाँ भगवान संकेत कर रहे हैं कि तुम में वैराग्य क्या आया है, जो देह आसक्ति का मूल है, बंधन का मूल है, दुख देने वाला है, उसी देह को जा करके पोस रहे हो। देह पोसने के लिए वैरागी नहीं हुआ जाता है, देह सुखवाने के लिए वैरागी हुआ जाता है, जो पहले से देह तंदुरुस्त है उसको भी शुष्क करने के लिए, देह को खिलाए पिलाएंगे तो जैसा पहले हुआ था कि अगर ज्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे पोसेंगे तो ये गुरु ज्ञान भक्ति का उपदेश नहीं करेगा और संसार महांधकूप में फेंक देगा और विषय की कामना बढ़ेगी, भोगों की लालसा बढ़ेगी, इसको बहुत बढ़िया से रखने पर। भगवान बहुत कृपा करते हैं उन भक्तों पर, साधकों पर, जिनका जिनको रोग हो जाता है या जिनका शरीर कुरूप हो जाता है जैसे तैसे, वास्तव में भगवान की दया है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखिए तो ये भगवान की अनुकंपा है, उनका स्नेह है उस भक्त के प्रति, जिससे कि संसार में लोग उसको पूछे ही ना, और नहीं जहां पूछना चालू किए तो ये भजन सजन छोड़ करके बस उनका गुलाम हो जाता है। इस तरह से ये शरीर है। अवरुद्ध धनकार्थ या तो देह है या जीव है। यहां श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि संचितानि धनानि जेन सह देह विशेषणम् वा, जीव के लिए जो मरमर करके धन इकट्ठा करता है किसके लिए, देह के लिए, लेकिन वही ससुर देह अंत में गिर के खत्म हो जाए, साथ न दी हम बिना भोजपुरी के क्लियर नहीं हो। जिस देह को पोसने के लिए बाप रे बाप क्या क्या खाए, आप जन्म से जोड़िए अब तक कितना भोजन डाले, क्या क्या काम किए, ये किए वो किए। एक बार मैं इस श्लोक को कुछ कहा था, प्रीचिंग में कहीं कहा था, एक आदमी कहा कि आत्मा क्या देह के लिए कह रहा है, देही न देह खातिर कमैले है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, देह नहीं कमा सकता है, देह अगर मर जाता है गिर जाता है तो उसमें कुछ कमाएगा, रखा हुआ जूता नहीं पहन सकता है, वो और क्या कमाएगा। देह में रहकर आत्मा कमा रहा है वास्तव में। अच्छा, वो क्यों कमा रहा है? देह को सुखी करने के लिए, लेकिन देह उसका साथ छोड़कर गिर जाएगा, भाग जाएगा। तो जो आत्मा से प्रेम नहीं कर रहा है, इतना मरमर करके बेचारा आत्मा काम किया देह के लिए और देह छोड़ करके भाग जाएगा, तो ऐसे धूर्त देह में क्या आस्था करनी है, इसे क्यों प्रेम करेंगे? जो हमको अंत में धोखा देगा उसको हम आज ही ना धोखा दे दें, हम काहे इसको पोसेंगे, हम क्यों इसमें आ सकते हैं? जीव देह पोसने के लिए नहीं आया है। तो और देह है क्या? देह है माटी का धोंधा, पृथ्वी का विकार है। वास्तव में इस देह को पोषने में जितना आदमी का समय जाता है उतना भजन में कहां जाता है। जो लोग भक्त हो गए उनकी बात मैं कह रहा हूं, भागवत सप्ताह को वाद करके और दिन को देखिए, मुंह धोने में, खाने में, सोने में, नहाने में, शौच होने में रोज रोज कितना समय जाता है, और फिर देह के लिए ही काम कर रहे हैं, वो भी समय उसी के लिए जा रहा है, सोना केवल देह के लिए हो रहा है। तो 24 घंटे में लगभग भक्त बने हुए लोगों का भी 20-22 घंटा केवल देह के लिए जा रहा है, और आत्मा के लिए क्या हो रहा है? आत्मा के लिए वही कुछ जप किए, मंदिर में चले गए, भागवत पढ़े, तो ये आत्मा के लिए हो रहा है। और कुछ लोगों का तो आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है, वे आत्मा राम की सेवा में लगे, कोई आत्मा से मतलब नहीं। आत्मा अधोगति में जा रहा है, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन घर द्वार देह की पूजा में लगे, ये सीखने की बात है कि यह शरीर दुख देने वाला है। श्रीपद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं इस पर कि बीजम सृष्टवा, बीज की सृष्टि करके तब ये शरीर गिरता है। देह नाशे अपनी न दुख समाप्ति ही, अस्य पुरुषस्य देहांतर बीजम कर्म सृष्टवा इत्यर्थ। बीजांतर परंपरा रंभणम हेतुरस्य, एक देह प्राप्ति की परंपरा की सृष्टि करके जाता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए इस समय जो कर्म कर रहे मनुष्य शरीर में तो एक देह मिलकर बंद हो जाएगा, नहीं। जैसे एक वृक्ष से हजारों लाखों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, उसी तरह से इस मनुष्य देह में किए गए कर्मों के कारण आगे बहुत बहुत शरीर मिलेगा, और सब शरीर दुख भोगने के लिए मिलता है। इस तरह की व्यवस्था ये देह करके जाता है। वास्तव में इसमें बेचारा देह का क्या दोष है? सब दोष आत्मा का है, लेकिन फिर भी आत्मज्ञान देने के लिए देह से पृथक करके बात कही जा रही है कि देह दुख की व्यवस्था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सृष्ट्वा पुराणि विविधान अजयात्म सत्या, वृक्षान् सरीसृपतशं खगदं समत्स्यान्, तैस्तैरतुष्ट हृदयः पुरुषं विधाय, ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमात्तदेवः। इस श्लोक में यह बात कही गई है, सृष्टवा पुराण विविधान, भगवान ने बहुत प्रकार के पुराण शरीरों का निर्माण किया। सृष्टि के शुरू में भगवान ने बहुत बहुत शरीर रचे, 84 लाख प्रकार का शरीर। सृष्टवा पुराणी, पुराणी का अर्थ होता है पूरे नगर। हम लोग इस शरीर में रहते हैं, अतः यह जीवात्मा के लिए एक नगर है। भागवत के चौथे स्कंध में इसको पुरंजन नगर कहा गया है। एक नगर में जो जो चीज होता है वो इस शरीर में सब है। 9 गेट हैं इसमें, और 9 गेट से यह जीवात्मा पांचाल देश में जाता है, 5 विषयों में घूमता है। जैसे राजा किसी राजधानी से निकलकर कहीं घूमता है और फिर राजधानी में लौट आता है, तो इस तरह से इस शरीर में, इस नगर में रहते हुए यह जीव जो है एक राजा की तरह है। राजा इसको इसलिए कहा गया है कि अपने मन का राजा है, जब खाने को मन करता है खाता है, सोता है खेलता है, तो राजा ही है कि नहीं? अपने अपने शरीर के सब राजा है। बाद में भले नरक में जाएंगे, लेकिन इस समय तो राजा है। जो मन करता है तो खैनी भी डाल देते हैं इस नगर में, या अंडा भी डाल देते हैं। कोई शास्त्र का डर है, न भगवान का डर है, न नरक का। तो इसलिए इस जीव को इस नगर का राजा कहा गया। तो चूंकि इस शरीर में जीव रह रहा है और इस शरीर का उपयोग उसी तरह से कर रहा है जैसे राजा अपनी राजधानी का प्रयोग करता है, और इस शरीर में और कई भी डिपार्ट हैं, कई संगति बैठाई गई है। यहाँ समय बहुत कम है, इसलिए मैं गिना नहीं पाऊंगा कि कौन कौन अंग नगर का कौन कौन अंग है। जैसे पुरंजन उपाख्यान यहाँ पर एक बार हुआ था ना, तो भगवान ने 84 लाख प्रकार का शरीर बनाया नगर, इस तरह से जीवात्माओं को रहने के लिए। सृष्टवा पुराणी विविधानी, विविधानी का अर्थ विविध प्रकार के। 9 लाख प्रकार के शरीर तो जल में रहते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले जब मैं सर्वप्रथम बंबई गया था, तो देखा समुद्र की लहरों से 100 से अधिक प्रकार के शरीर में गिना। ऐसे 9 लाख प्रकार के शरीर हैं, लेकिन मैं 100 से ऊपर गिना। हम और देवकी नंदन थे, गिन रहे थे। मैं कहा कि भाई 9 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, थोड़ा गिना जाए। तो 100 से ऊपर प्रकार के गिने, कोई लंबा, कोई गोला, कोई कुछ, कोई कुछ। आप इसी जगत में देखिए बाहर, मतलब स्थल पर कितने प्रकार के जीव हैं। पशुओं की बहुत सी संख्या है, लेकिन स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर सब मिलाकर के पशु 30 लाख प्रकार के हैं। जलचर जीव 9 लाख प्रकार के हैं। कीड़े मकोड़े 11 लाख प्रकार के हैं, और पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। और 20 लाख प्रकार के कौन है, और ये पेड़ पौधे जो है अचर, जैसे गेहूं, चना, पेड़ पौधा, ये 20 लाख प्रकार के। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य और देवता है। इस तरह से सब मिलाकर 84 लाख प्रकार के जीव। अजीब अजीब आकार है। मनुष्यों में भी कई लाख प्रकार के हैं। हम लोग विदेशों में देखते हैं अजीब अजीब प्रकार के आदमी हैं। कुछ ऐसे आदमी हैं जो वंश परंपरा से ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी कोयला पीस करके और पेंट किए, ऐसे शरीर है। और सभी लोग, एक आदमी भी गोरा नहीं। और कहीं कहीं ऐसा देश है कि सभी लोग गोरे हैं, लगता है कि सबको कोढ़ हुआ है, उजला कोढ़ है, नख से सिख तक एकदम उजला, पीला नहीं, उजला एकदम। तो सभी लड़का, स्त्री, पुरुष सब वैसे ही है। और आंखें जो है बंदर के समान बिल्कुल नीली आंखें रहती, हरी हरी आंख। तो भिन्न भिन्न प्रकार के आदमी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा है। मनुष्यों में भी इस तरह के हैं। फिर ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी मैं गलत कह रहा हूं, भगवान जब शरीर बनाने लगे, असल में ब्रह्मा जी का नाम इसलिए आ गया कि ब्रह्मा जी ही हाथ लगा रहे थे, बाकी भगवान के इशारे से सब हो रहा था। तो शरीर गढ़ने लगे, तो बहुत बहुत प्रकार के शरीर गढ़े। सबसे पहले वृक्ष। वृक्षान बहुत प्रकार के पेड़ पौधे बनाए, कई लाख प्रकार के, जैसे बरगद है, चकवर है, इस प्रकार के छोटे बड़े वृक्ष बनाए। सरीसृप, सरीसृप मतलब सरक कर चलने वाले, रेंगने वाले, जैसे सांप वगैरह सब। सरीसृप पशु, पशु बनाए गए, गाय भैंस बकरा ऐसे पशु। खग पक्षी। दंश, दंश मतलब मच्छर आदि, दंश मक्खी डांस के सब। और मत्स्यान मछलियां बनाए, बहुत बहुत प्रकार का शरीर बनाए, लेकिन जितना शरीर बनाए भगवान तैस्तई अतुष्ट हृदय, भगवान का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ है। सब बनाने के बाद भगवान यही सोचते थे तो सब बेकार शरीर है। अतुष्ट हृदय, भगवान का हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। तब इसके बाद पुरुषम विधाया, तब वे मनुष्य शरीर बनाए, अंत में, सबसे अंत में पुरुषम विधाया। पुरुषम की विशेषता बता रहे, ब्रह्मावलोक भीषणम, पुरुष का शरीर जब भगवान बनाए, मनुष्य का शरीर बनाए, तो उसमें ब्रह्म अवलोक भीषणम, भीषणम का अर्थ है बुद्धि, और ब्रह्म माने भगवान, अवलोक माने ज्ञान, ऐसी बुद्धि दिए भगवान मनुष्य की खोपड़ी में कि उससे वो ब्रह्म को समझ सकता था। इस माया से पार की स्थिति को, भगवान को, भगवान के धाम को और अपने को वो समझ सकता था। यह बुद्धि केवल मनुष्य के शरीर में भगवान दिए, और कहीं नहीं दिए। तो मनुष्य शरीर बनाने के बाद मुदम आप देव, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, मुदम आप, उनको बड़ा मोद प्राप्त हुआ, और यह सोच करके बहुत प्रसन्न हुए कि इस शरीर से जीव मेरी भक्ति कर सकता है। और जितने भी शरीर हैं उनमें भगवान ने बुद्धि नहीं दिया, केवल माया को जानने की बुद्धि दिया, सांसारिक बातों के रूप रस गंध आदि को ग्रहण करने की बुद्धि दिया, लेकिन ब्रह्मावलोक भीषणम, जो ब्रह्म को समझने की बुद्धि है, भगवान को समझने की, लोक परलोक आदि को समझने की जो बुद्धि है, वो है मनुष्य के शरीर में। तो जब इस प्रकार का शरीर भगवान ने दिया, तब मुदम आप, आप मतलब प्राप, उनको बड़े बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। इसी के बाद वो श्लोक आया था जिसकी मैं कथा कहा था कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुशं भवान्ते मानुष्य मर्थद मनित्यमपीह धीर तूर्णम जतेत न पतेदनु मृत्यु जावत निःश्रे ऐसा विषय खलु सर्वतः स्यात्। तो इस प्रकार यह शरीर बहुत दुर्लभ है और बहुत बहुत जन्मों के बाद यह मिला है, मिलने के बाद भी कोई ठिकाना नहीं कब यह नष्ट हो जाए। यह देहिया कागज की पुड़िया बूंद लगे गल जाना, कागज की पुड़िया होती है उस पर अगर पानी डाल दीजिए दो चार बूंद भी तो बूंद पड़त गल जाना, गल जाए। यह शरीर वास्तव में इतना कच्चा है महत्वपूर्ण, लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कब लकवा मार देगा, कब कौन रोग हो जाएगा, कब आदमी मर जाएगा, क्या होगा, कोई ठीक नहीं। और इस समय तो संसार के ऊपर बहुत भारी खतरा आ गया है, कब कहां बम पटक दिया जाएगा कोई ठीक नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि जो है वो द्वेष से, अज्ञान से, काम से, लोभ से भरती जा रही है। पहले, अभी कुछ ही वर्ष पहले की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है इस जगत में, इस संसार में, तो संसार के बड़े बड़े मनीषी मिल करके राष्ट्र संघ बनाए, और सोचे कि किसी तरह से मनुष्य की इस आसुरी प्रवृत्ति पर रोक लगा दिया जाए, कोई इस तरह से युद्ध न करने पावे। लेकिन अब इस समय ऐसी स्थिति हो गई है कि वह राष्ट्र संघ एक नाम मात्र का रह गया है, और उसमें कोई दम नहीं है। जो उसके सदस्य हैं वही लोग इस प्रतीक्षा में है कि हम किसी देश पर बम पटक दें, उसमें जो रह रहे हैं वे लोग। तो किसी तरह से दिन टल रहा है, किसी तरह से दिन टल रहा है, लेकिन किसी दिन भयानक बम गिरेंगे। ये खेत में, खलिहान में, घर में, आंगन में, कहीं भी राम राम कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई व्यक्ति यह न माने, मान लीजिए कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसी आकाशवाणी होती रहती है, भविष्यवाणी होती रहती है, यह हो सकती है वाणी झूठी हो, ठीक है वाणी झूठी है, रोग तो झूठा नहीं है ना, भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी, लेकिन उस भविष्यवाणी के बावजूद भी रोज लोग मर रहे हैं कि नहीं, वो भविष्यवाणी ना सत्य हो लेकिन लोग रोज मर ही रहे हैं, ट्रक दुर्घटना हो रही है, बस दुर्घटना हो रही है और नाना प्रकार के रोग बढ़ रहे हैं। इस समय मैं गया था लास्ट टाइम बॉम्बे में, मैं सब जगह देखा एड्स 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 एड्स, सावधान हो जाइए, सब जगह लिखा हुआ है। एक ऐसा भयानक रोग बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है, कब हार्ट अटैक कर जाएगा, किसका कोई ठीक नहीं। अभी 2 बरस पहले ना, 1 बरस पहले दिल्ली में डेंगू नाम के मच्छर उत्पन्न हुए थे और काट दिए, कई लोग मर गए, बड़े महत्वपूर्ण लोग भी जान से हाथ धो बैठे, हजारों हजारों की संख्या में लोग मर गए। और ऐसी गंदगी बढ़ रही है शहरों की और गांवों की कि इस गंदगी के चलते आयु कम हो जाएगी दिन पर दिन। एक तो खाने को दूध दही नहीं मिल रहा है और दूसरे गंदगी बढ़ गई है और तीसरे काम क्रोध लोभ आदि मन की गंदगी भी बढ़ती जा रही है। तो कब झगड़ा हो जाएगा, कब मारपीट होगी, कब कौन मरेगा, अभी कोई ठीक नहीं। लेकिन हम कलयुग की समस्त बुराइयों से यदि बचना चाहते हैं तो कलि संतरण उपनिषद कहता है कि हमें महामंत्र का जप करना चाहिए, बच जाएंगे, लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। यदि सभी लोग भगवान का नाम जप करेंगे तो इससे बहुत सुंदर वातावरण फैलता है, मन शुद्ध हो जाता है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, करोड़ों लोगों की मति को भगवान के नाम ने शुद्ध किया है। हम लोग बारम्बार यह कहते हैं कि जप कीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म है, कहीं भी कर सकते हैं, तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग बहुत खतरे में हैं। एक बार मैं ऐसा कहा तो एक व्यक्ति ने कहा कि अरे खतरा क्या है, कौन जानता है कि भविष्यवाणी सफल होगी। तो मैं उसको कहा कि भविष्यवाणी छोड़ो, तुमको कोई रोग है कि नहीं। तो वो बड़े गर्व के साथ कहा, रोग है, हम रोज 25 रुपए की दवा खाते हैं, तो तब तुम्हारे लिए बम की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए तो कोई जरूरत नहीं है। जब 25 रुपए रोज दवा में लगाते हो तब तुम्हारे जीवन का क्या ठिकाना, कितना दिन जियोगे। तो कहा स्वामी जी आप ऐसी बात कहते हैं कि आदमी तो हताश हो जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं। मुझे कहा अजीब बात है, मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं तो आप हताश हो रहे हैं। मैं कहा कि आप जा करके कालिका मेल से टकराने जा रहे हो रेलवे लाइन पर, मैं कह दूं कि अरे भीड़ आ रही है, भाग भाग, तो कहो आप हताश क्यों कर रहे हैं, हमको चलने दीजिए लाइन पर, जो हताश कर रहे हैं। हम संकट से बचने के लिए कह रहे हैं तो कहते हताश कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि आप लोग साबस साबस कीजिए कि जो जो कर रहा है करते रहो, कोई खतरा नहीं है, न मरना है न जीना है, अजर अमर है, कोई बात नहीं। तो क्या यही धर्म है, मरना जीना है, हम भी शरीर छोड़ेंगे, सबको शरीर छोड़ना है, ये हमारे साथ लगा हुआ है। तो शरीर जिस काम के लिए है वो काम कर लेना चाहिए ना, और शरीर एक ही काम के लिए भगवान ने दिया है, ब्रह्मावलोक भीषणम, कि हम ब्रह्म को भगवान को समझ जाए इस बुद्धि से, नहीं तो फिर पशु का शरीर मिलेगा तो ये ऐसी बुद्धि नहीं मिलेगी, हम सदा के लिए चांस खो देंगे। तो जप करना चाहिए, और यहाँ जैसे भक्तों ने कहा है कि कुछ लोग माला लेने के लिए कल नाम लिखवाए हैं, तो लोग माला ले ले और नियमित जप करें। वर्ष में भगवान एक बार एक अवसर देते हैं ज्ञान प्राप्त होने का, ज्ञान तो नष्ट हो जाता है लेकिन फिर भी बारंबार सत्संग करने से, भागवत पढ़ने से, भक्तों का संग करने से ज्ञान बना रहता है। इसलिए आप लोग पढ़िए, जो पढ़ना जानते हैं, एक पन्ना दो पन्ना रोज गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, और जो नहीं पढ़े हैं उनको बताइए पढ़ करके, अपने घर के लोगों को, गांव के लोगों को, जाति के लोगों को, हित को, बताना चाहिए। आजकल तो बहुत हित घूम रहे हैं, माघ फागुन के महीने में बहुत घूमते रहते हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि ठीक है आप हमारे यहाँ से एक दहेज ले जाइए माला और आप भजन कीजिए। है तिलकोहारू चाहे कोई भी अपना बहनोई आवे या साला आवे दमाद आवे, सबको कहना चाहिए कि आप भगवान की भक्ति लेकर के जाइए, कि महंगे सिंबल होगा उतरवा के छोड़िए दिहल बा। तो इस तरह जैसे हम लोग हित को संबंधी को देते हैं ना, कुछ धोती देते हैं, कुछ देते हैं, उसमें पैसा बांधते हैं, हल्दी बांधते हैं, चावल एक माला कंठी भी बांध कर दे दीजिए उसमें कि ले जाइए और पहनिएगा, चाहे अपने घर में किसी को दीजिएगा, इसे देना चाहिए। वास्तव तो माला पर भगवान का नाम जपा जाता है, एक दाना पकड़कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तब ऐसे बढ़ते हैं और बढ़ करके ऐसे आते हैं तो यही से फिर लौट जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। इस माला को आप चलते समय भी जप सकते हैं, लेटे लेटे जप सकते हैं, बैठ करके जप सकते हैं, बस में ट्रेन में पैदल चलते समय, गाय चराते समय, या कभी भी जो हाथ खाली है तो आप कर सकते हैं। और हाथ जब न खाली हो, काम धंधा में लगा हो, तब केवल जीभ से करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और कीर्तन जब करना है तो नाचना चाहिए और हाथ को ऊपर करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो देवता लोग तर जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, ऊपर के सभी जीव तरते हैं, और पैर की धमक से पृथ्वी और पताल के लोग धन्य हो जाते हैं, और गाने से नाचने से इस लोक के सब लोग धन्य हो जाते हैं। कीर्तन में हाथ ऊंचा करना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए और भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। तो कई बरस भागवत हुआ और हम समझते हैं कि अभी यहाँ भी अंडा मछली खाने वाले लोग रह ही गए होंगे, शराबी हैं कि नहीं, यहाँ शराबी भी रह गए। तो बताइए, विदेहा नाम पूरे यस्मिन अहमे कई वो मुंह दी, विदेहों के नगर में मैं ही एक मूढ़ हूँ, ऐसा जैसे पिंगला ने कहा था। कुकुड़ा में जन्म लेकर के भी अभी अंडा चल रहा है, शराब चल रहा है, तो शराब जैसी बुरी वस्तु कोई नहीं है, फिर तो आदमी की बुद्धि पूरी नष्ट हो जाती है। महात्मा गांधी से पूछा गया था कि भारत स्वतंत्र होगा तो सबसे पहले आप कौन काम करेंगे, तो गांधी जी ने कहा था कि मैं शराब बंद करूंगा सबसे पहले। इसे मति भ्रष्ट हो जाती है और आदमी अपना संबंध भी नहीं देखता है, बेटी बहन नहीं चिंता है, इसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, कोई भी पाप कर सकता है शराब पीने वाला, कभी नहीं पीना चाहिए। आज बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में हो गई है इस बात के लिए। और जैसे चार महापाप है, नो इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान नहीं, मांस भक्षण नहीं, जुआ नहीं और पर स्त्री गमन नहीं, ये चार महापाप है, इनसे बच करके भगवान का नाम जप करना चाहिए। ठीक है, जिनके नाम